इस दुनिया में जिस मकसद के लिए भेजा है उस मकसद की तकमील और यह इकराम की तालीमात से होती है। मकसद तकलीफ औरतों के लिए भी और मर्दों के लिए खातिन हजरात दोनों के लिए अपनी तब्दील मकसद के लिए इकराम को दुनिया में पैदा फरमाया है, भेजा है, थोड़े से वक्त के लिए रखा है। वो मकसद की तस्वीर हजरत औलिया किराम जो कि जानशीन होते हैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और आपकी तालीमात को फैलाते हैं, आपकी तरबियत को फैलाते हैं, आप वाली तालीमात की रोशनी में लोगों की तरबियत करते हैं, वो तरबियत के लिए इसके माहिर होते हैं, वो तस्वीर होती है उस मकसद की, इसलिए सिलसिले के अनुमान से इजलास होते हैं, तरबियती इज्तम होते हैं और उनकी तालीमात को सुना और सुनाया जाता है। उसके जरिए से आदमी का किला बनता है, जहन बनता है, फिक्र बनती है, दिल तैयार होता है। ऐसा दिल हमारा जो हर आदमी के सीने में है और एक है दिल वो जो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ मोहतबर है। अल्लाह के यहाँ जो दिल मोहतबर है वो अलग है बिल्कुल, और वही वो दिल है कि जो मतलब के कुरान करीम में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कुरान करीम में नबिया के उस आदमी के लिए जिसके पास दिल हो, जाहिर है कि इससे मुराद वो दिल तो नहीं है जो आदमी के अंदर है, बल्कि उस दिल के अंदर एक दिल होता है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की पहचान की सलाहियत होती है। अल्लाह पाक को पहचानता है, अल्लाह की अज़मत को लेता है, अल्लाह पाक की बात की हुर्मत को एहतराम को लेता है, वो दिल मुराद है। अल्लाह बुजुर्गान ने दी कायदे कल्ब होते हैं और अल्लाह ने यह बताया कि कुरान पाक उनके पास होता है, कुरान का नूर, कुरान की बरकत, वही की बरकत, वही का नूर, ये उनके पास होता है। क्योंकि ये कुरान पाक का बयान है कि किस कुरान पाक से फायदा उनको होता है जिनके पास में नहीं होता। और दूसरी बात, अल्लाह पाक ने मायूस नहीं फरमाया उन लोगों को जिनके पास वो दिल नहीं है, वरना अगर तुम्हारे पास दिल नहीं है तो तुम दिल को कान दे दो और सत्तम आप और वह शहीद हो, या अपना कान पेश कर दे हाजिर हो, हाजिर जुमारे के साथ जो साहिब कल्ब के सामने अपना कान रख देगा तो फिर उसको भी फायदा हो जाएगा, उसमें भी वही दूर उनका भी हो जाएगा। वो बुजुर्ग चूंकि साहिब कल्ब होते हैं तो हमारा अपना काम ही होता है कि हम साहिब कान होते हैं। कुरान पाक मुआदा है कि साहिब कल्ब को फायदा मिलेगा और कल्ब वाले के कान देने को फायदा मिलेगा। इसीलिए तीर जो है वो दुबारे महज होता है और मुरीद जो है वो काने महज होता है। मुरीद का काम कान दे देने का है, बल्कि अगर ये फरमाया करते थे कि कान दे दे वो हमारा मुरीद, चाहे रत्मन मुरीद हुआ हो या न मुरीद हुआ हो, प्याला उसने पिया हो या न पिया हो, आपने हाथ दे के उसने मुआहदा किया हो या न किया हो, लेकिन जिसने कान दे दिया यानी जिसने सच्ची तरफ के साथ हमारी बात सुन ली और हमारी बात सुनने के लिए वो तैयार हो गया सच्ची तलब के साथ, सच्ची चाह के साथ, वो हमारा भी है। क्योंकि मुरीद कान का नाम है और मुर्शिद दिल का नाम है, जिसके पास में दिल है वो मुर्शिद है और जिसके पास में कान है वो मुरीद है, वो मुर्शिद है, उसको तलब करने वाला है, हिदायत चाहने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत, अल्लाह तबारक व तआला की हिदायत, ये हासिल करना ही मेरे दोस्तों मकदूर होता है औलिया अल्लाह की तालीम में। क्योंकि औलिया अल्लाह को अल्लाह पाक की दोस्ती हासिल है, औलिया वली की जमा है, वली के माने दोस्त के। हर ईमान वाला अल्लाह का वली होता है, इसको मिलाया के आमान कहते हैं। जिसने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह की इजमालन तस्दीक कर दी वो अल्लाह तबारक व तआला की विलायत में आ गया। मगर ये विलायत विलायत आमा होती है, अल्लाह वलीयुल लदीन आमनू, अल्लाह ईमान वालों का वली है। और इस विलायत आमा का भी फायदा होता है, युग युग में जुल्मा के नूर के अल्लाह पाक उनको जुल्मानों से निकालता है और नूर की तरफ लाता है। नूर वाहिद है इसलिए अरबी में भी नूर वाहिद बोला गया, और जुल्मतें बेशुमार हैं, जुल्मत शिर्क की भी है, जुल्मत शिर्क फजूर की भी है, जुल्मत बिदात की भी है, जुल्मत खुराफात की भी है, जुल्मत गफलतों की भी है, जुल्मत बड़े गुनाहों की भी है, जुल्मत छोटे गुनाहों की भी है, और जुल्मत खुद करदा गुनाहों की भी है, जुल्मत बैठ के करदा गुनाहों की भी है, बेशुमार जुल्मतें। इसी बात करना है कि अल्लाह मंदिरों से निकालता है, ईमानदारों को नूर की तरफ लाता है, वैर से निकालता है और खुद की तरफ ले ले आता है। गंगा जी ने कहा वो जो काफिर है और ये उनके जो वली है वो भी किसी न किसी के वली है, विलायत तो बाहर है। ये नहीं है कि अगर किसी को अल्लाह की विलायत हासिल नहीं है तो फिर उन्हें किसका भी नहीं, उन्हें है, वो भी किसी का वली है। और अल्लाह ने बता दिया कि वो किसका वली है, औलिया और ताऊत, उनके वली जो है वो ताऊत है। शैतान ताऊत को शैतान कहा जाता है, शैतान है उनका वली, जिसको अल्लाह का वली नहीं है फिर वो शैतान, उनका शैतान वली है। ये मतलब नहीं कि मैं वली बता नहीं हूँ तो मैं भी नहीं हूँ, ये वली शैतान है। या इधर का रास्ता है या उधर का रास्ता है, दोनों में से जैसे आखिरत में या जन्नत है या जहन्नम है, कोई इधर रास्ता नहीं। जैसे आदमी आगे आंखें आगे बंद होंगी वो या जन्नत में जाएगा या जहन्नम में जाएगा। और आराम का जो मकाम है जहाँ लोग थोड़े देर के लिए रहेंगे जिनकी नेकी उनकी और बुराई में उनके आमाल बराबर होंगे और के मुताबिक, तो वो भी आर्जी तौर पर थोड़ी मुद्दत के लिए मुस्तकिल नहीं है कि मुस्तकिल में कयाम होगा उनका जिंदगी उनकी वहां मिलेगी, वैसा नहीं। बाद में अल्लाह तआला ने अपने फजल से अच्छा ले आ रहा वो भी जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। जैसे दुनिया में जन्नत आखिरत में जैसे जन्नत और जहन्नम है, दो ही रास्ते हैं, कोई इतना नहीं है, या हमको जन्नत में ही जाना है या जहन्नम में जाना है। तो ये कहे कि साहब जन्नत हमसे नहीं तरक्की जाती, जन्नत वाले हम काम नहीं कर सकते, जन्नत कमाने का हौसला हमारे पास नहीं है, जन्नत की हिम्मत हम नहीं कर सकते, हम कमजोर हैं, गरीब हैं, हमसे कुछ नहीं हो सकता, मगर हम जहन्नम में भी नहीं जाते, ये बात सुनी जाने वाली नहीं। इसलिए खाही ना खाही यहाँ जन्नत की तैयारी आदमी को करनी, जो जन्नत में नहीं जा सकेगा वो जहन्नम में जाए। और दुनिया में जो आदमी अल्लाह ताला से दोस्ती नहीं पैदा कर सकेगा, शैतान से उसकी दोस्ती हो जाएगी ऑटोमेटिक, कोई तीसरी राह नहीं है। अगर अल्लाह के नहीं है तो गैरुल्लाह के भी नहीं है, ऐसी बात है। अगर अल्लाह के नहीं है तो फिर गैरुल्लाह के, विलायत अल्लाह के अगर हासिल नहीं है तो विलायत ताऊत की हासिल है, कुरान पाक के बयान के मुताबिक। विलायत आमा भी होती है, अल्लाह की विलायत आमा नहीं है तो शैतान की विलायत आमा हासिल है। और ऐसा भी होता है कि किसी को अल्लाह की विलायत खासा हासिल होती है, किसी को शैतान की विलायत खासा हासिल होती है, शैतान का वली खास होता है। लिखा है कि एक वक्त होता है कि आदमी इंसान जो है वो शैतान में शामिल हो जाता है, क्योंकि शैतान के लिए दिन होना जरूरी नहीं, इंसान भी शैतानों में से होते हैं। और फिर उसके बाद एक वक्त होता है कि शैतान उसकी विलायत की ज़ुरियत में शामिल हो जाता है। इंसान जब तरक्की करता है तो शैतान में भी इतनी तरक्की करता है कि शैतान का उत्साह होता है और शैतान तादत समझता है कि आपने मुझे अपनी शागिर्दी में ले लिया। शैतान ये काम इंसान जब करता है अपनी होशियारी से तो शैतान के पास वो ताकत नहीं है जो इंसान के पास है। शैतान के पास इतनी बात नहीं है कि वो इंसानों में इंसानों को देखता है, इंसान शैतानों को नहीं देखता। शैतान में ये बात है कि इसका शैतान ये जितनी बजरता हूँ, शैतान इंसान के अंदर वहां तक दौड़ता है जहां तक खून जाता है रगों के अंदर। शैतान शैतान अभी तो अला पेशू में ही इन शैतान इधर खिला तो होता था हस्तक्षेप में इन शैतान अभी तो अला पेशू में तो वजू करो तो नाक अच्छी तरह साफ किया करो, इसलिए कि शैतान नाक के वास्ते में रात गुजारता है। तो ये तो है कि इस एतबार से शैतान में लताफत है कि वो दूर तक जाता है, आदमी के जिस्म में घुसता है, लेकिन किसी आदमी को बहकाने में, किसी आदमी को सही रास्ते से हटाने में शैतान को तसल्लुक हासिल नहीं है कि जबरन वो किसी को बहका दे। मेरे पास तो खाने के मैं तुमको मजबूर करता, हाँ मैंने दावत दी थी तुम्हें। बोकाल शैतान महमूद जब फैसला हो चुकेगा बुराइयों के लिए बुराओं के लिए जहन्नम का और कुफार सज्जार के लिए जहन्नम का, तो इनको बड़ा बड़ा अफसोस होगा। तो ये लोग कहेंगे, शैतान सबको कहेगा कि इन वादा इंसान होते कि देखो अल्लाह ने जो वादा किया था वो सच्चा वादा किया, अल्लाह का वादा सच्चा होता है, मेरा वादा भी सच्चा होता है। मैंने जो वादा किया था उसकी मैंने मुखालफत की, मैं तो वादा मेरा हुई, मेरा जो काम था मैंने किया, अल्लाह ने जो काम है वादा नहीं किया। अल्लाह वादे का सच्चा है, अल्लाह ने वादे को पूरा किया कि जो ईमान लाएगा उसको जन्नत मिलेगी, नजात पाएगा, जो बेईमान रहेगा वो जहन्नम में जाएगा, अल्लाह का वादा बिल्कुल सच्चा। और मैं वादा खिलाफ तो मैं अपने काम पे हूँ, मैंने वादा खिलाफ की, मैंने तुमको रास्ता भटका दिया। हमारा काम का लिया अभी तुमने सुनवाई और मुझको तुम्हारे ऊपर कोई सल्तनत नहीं थी, कोई गलबा हासिल नहीं था, कोई कुवत हासिल नहीं थी, इल्ला अल्लाह को मगर मैंने तुम्हें बुलाया था, ये काम तो मैंने जरूर किया। पर तजब तुम भी तुमने मुझे कबूल कर ली, तुमने मेरी बात कबूल कर ली, फला तजुमोनी वजुमोन करो, मुझे मलामत न करो, अपने को मलामत करो। मारा तुम अपने को ममा मुझे दिया, आज मैं तुम्हारे बचा नहीं सकता, तुम्हें बचा नहीं सकता और तुम मुझे नहीं बचा सकते। इन्नी कफर तुम्हें माशरत کے پاس معرفت نہیں ہے یہ بات نہیں ہے, علم اس کے پاس ہے, معرفت اس کے پاس ہے, محبت نہیں ہے. ڈاکٹر تنویر صاحب بھی کرکٹ جو تشریف لائے تھے اپنی مجلس میں اس مضمون پر حضرت جنرل والے رحمۃ اللہ کی طرح محدود کر کے تفصیل سے بیان کر رہے تھے کہ وہاں محبت نہیں تھی بس, ورنہ معرفت اس کے پاس میں بھی تھی, اور اتنی معرفت اس کے پاس ہے کہ توحید میں اتنا توحید اتنی جانتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنے دربار سے مردود کر دیا تو اس نے اللہ رب العزت کو خطاب کر کے فرمایا کہ رب بما اغویتنی, رب بما اغویتنی, پروردگار اس وجہ سے کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے. کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ ہدایت اور ہدایت ایک ہی جگہ سے آتی ہے. آدم علیہ السلام بھی توحید کے پکے, لیکن آدم علیہ السلام ادب والے اور شیطان بھی ادب تھا. آدم میں اور شیطان میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام بھی جانتے تھے کہ درخت میں نے نہیں کھایا, درخت میں نے مجھے کھلوایا گیا ہے. وہ جو جنت کا درخت کھانا تھا جس سے مجھے باہر آنا تھا وہ میں نے نہیں کھایا, مجھے کھلوایا گیا ہے, یہ آدم علیہ السلام جانتے تھے. لیکن جب درخت انہوں نے کھا لیا اور اس میں تک لیا تو یہ نہیں کہا کہ یا اللہ رب بما اخطأتنی, مجھ سے آپ نے خطا کروا دیا, یہ نہیں کہا کہ آپ نے مجھے غلطی, آپ ہی نے مقدر فرمایا تھا تو میں کیسے نہ کھاتا, یہ نہیں کہا آدم علیہ السلام. انسان کا سوال یہ ہے کہ غلطی ہو جائے تو اللہ پہ نہ ڈالے, شیطان کا کام یہ ہوتا ہے غلطی ہوتی ہے تو بھی اللہ کی طرف ڈال دیتا ہے. ادب سیکھنا ہے, ادب میں یہ بات ہے کہ غلطی کی نسبت اپنی طرف کر لینا. آدم علیہ السلام توحید میں کیسے پکے نہ ہوتے, وہ تو نبی تھے, وہ پہلے انسان اور پھر پہلے نبی, نبیوں میں بھی نبی, بہتمان مرتبے اور فضیلت کے پہلے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. لیکن بہتمان موجود خارجی کے اس دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی ہیں, پہلے نبی بھی ہیں, تو ان کے پاس توحید ہوتی اور ان کی توحید کے لیے وہ حدیث کافی ہے جو مشکا شریف میں موجود ہے کہ وہ سارے کہتے جو آدم ہو موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام کی اور آدم علیہ السلام کی بحث ہوئی عالم ارواح میں. جب موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا وہاں عالم ارواح میں اس سے ملاقات ہوئی آدم علیہ السلام سے, وہاں دونوں کی بحث ہوئی اور آدم علیہ السلام نے پورے آداب کو مدد کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ وہ ہیں کہ اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے, آپ وہ ہیں کہ اپنی روح اپنی روح میں سے اپنے اندر سے خاص اپنے اندر روح پھونکی ہے, آپ وہ ہیں کہ آپ کو مسجد ملائکہ بنایا کہ فرشتوں سے سجدہ کروایا, آپ وہ ہیں کہ آپ تعلیم اسماء فرمائی کہ وہاں معلوم اسماء اللہ, اور آپ کو اللہ پاک نے جنت میں رکھا, آپ کے ساتھ سے اللہ پاک کے انعامات ہیں, اور آپ نے ایک کام بھی کیا, اللہ نے کہا کہ درخت کے قریب بن جاؤ تو آپ چلے گئے, اور نظر یہ کہ آپ بے بن کے سب کو دان پسا دیا, مطلب آپ نہ کھاتے تو پھر ہم بھی مجھے پسند جان پا جاتے. آدم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ تورات میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے غلطی کی, فرمایا کہ ہاں لکھا ہوا ہے, فرمایا تورات کب لکھی ہوئی ہے, فرمایا آدم آسمان اور زمین کے بننے سے 50,000 سال پہلے ایک روایت میں اور 2,500 سال پہلے ایک روایت میں, آسمان اور زمین کے بننے سے, چلو 2,500 والی روایت میں, آسمان و زمین کے بننے سے 2,500 سال پہلے تورات لینا لکھی گئی لوح محفوظ میں, اور اس تورات میں یہ لکھا تھا کہ آدم سے غلطی ہوئی, وعصا آدم ربہ فغوا, آدم سے غلطی ہوئی اور آدم نے درخت کو کھا لیا, اور آدم علیہ السلام آسمان و زمین کے بننے کے بے حساب سالوں کے بعد بنائے گئے, سینکڑوں کروڑوں سالوں کے بعد بنائے گئے. تو آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ مجھے ملامت کرتے ہیں ایسی بات پر کہ جو میرے لیے لکھ دی گئی تھی میرے پیدا ہونے سے پہلے نہیں بلکہ آسمان زمین کے پیدا ہونے سے 2,500 سال پہلے جو لکھ دی گئی تھی, آپ مجھے اس پر ملامت کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی کہ واقعی مجھے ملامت کرنے کا حق نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک سجدہ آدم موسیٰ, حجت میں غالب آئے آدم موسیٰ علیہ السلام کو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ چیز میری طرف سے طے ہے اور مجھے اس کو کرنا ہے, وہی ہو کرنے سے پہلے تو نہیں جانتے تھے وہ, لیکن کرنے کے بعد پتا چلا کہ میں نے کیا وہی جو میرے لیے طے تھا, اور شیطان کو بھی اس کے گمراہ ہو جانے کے بعد اور مردود ہو جانے کے بعد میں پتا چل گیا کہ یہ میرے لیے طے تھا. واقعہ ہونے سے پہلے تفصیل کا علم نہیں ہوتا, واقعہ ہونے کے بعد میں تفصیل کا علم ہو جاتا ہے. واقعہ ہونے سے پہلے اس لیے حکم نہیں لگا سکتے, واقعہ ہونے سے پہلے آپ اس پر اعتماد کر کے بیٹھ نہیں سکتے کہ جو مقدر میں ہے وہ ہوگا, آپ کو کوشش کرنا چاہیے. خاندی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے میرے عزیزوں میں تو مجھے بڑی پریشانی ہوتی ہے, یہ دوا سے وہ دوا, یہ ڈاکٹر سے وہ ڈاکٹر, یہ دوا کھانے سے وہ دوا کھانا, کبھی یونانی ہے, کبھی ایلوپیتھک ہے, کبھی عمل عملیات ہیں, کبھی دعا ضرور ہے, اور فرمایا کہ جب وہ مر جاتا ہے تو مجھے سکون ہو جاتا ہے, میری پریشانی ختم ہو جاتی ہے. کیوں اس بات ہے کہ جب وہ مر گیا تو مقدر ظاہر ہو گیا, تقدیر سامنے آ گئی کہ اس کا مرنا طے تھا, لیکن جب تک وہ مرا نہیں ہو سکتا یہ نہیں پتا کہ شفا اس کی کہاں ہے. हो सकता है कि यूनानी दवा में शिफा हो, हो सकता है कि अंग्रेजी दवा में शिफा हो, हो सकता है कि धातुओं में शिफा हो सकता है कुछ एक डॉक्टर के पास दूसरे डॉक्टर के पास शिफा हो, क्योंकि ये नहीं पता कि कहाँ शिफा है, इसलिए मुझे फासला बहुत करनी पड़ती है, बहुत परेशानी होती है, ताकि तदबीर जो है वो तकदीर से मिल जाए, जाके तकदीर का काम जो है वो तकदीर के काम में जाए। एक पहिया पहिए का जब इंजन जब गाड़ी चलती है तो उसके मुख्तलिफ किस्म के वो होते हैं, पार्ट होते हैं, वो एक दूसरे के साथ ऐसे अटैच होते हैं कि एक फिरता है तो दूसरा दूसरा फिरता है तो तीसरा, उसके बाद फिर पहिए फिरने शुरू हो जाते हैं। ऐसी तकदीर और तकदीर में मैचिंग होना, उसमें मुआफ़त होना है, मुआफ़त काम होगी ये नहीं मालूम है, इसलिए मुझे कार्रवाई करना पड़ता है। इसलिए जिसको जितना तकदीर का इल्म सही होता है, तकदीर पर ईमान सही होता है, तदबीर में वो उतना ही कोशिश किया करता है। बेहतरीन तदबीर से बढ़कर कोई अकलमंदी नहीं है, सरकार द्वारा मुलाकात में बताया बेहतरीन तदबीर से बढ़कर कोई अकलमंदी नहीं है। तो वाकया होने से पहले तो मुकद्दर में क्या है नहीं मालूम होता, लेकिन वाकया होने के बाद में मुकद्दर में क्या है वो सामने आ गया। आदम अलैहि सलाम के सामने भी आ गया कि मुकद्दर में क्या है, और शैतान के सामने भी आ गया कि मुकद्दर में क्या है। और शैतान को ये बात मालूम थी कि ये मेरे लिए तय था, आदम अलैहि सलाम को भी ये बात मालूम थी कि ये मेरे लिए तय था। ये बात इस पर चली कि शैतान ये कहेगा कि इन्नी कफर तो बीमा अगर तुम नहीं मिल पाओ, बोले तुमने शिर्क किया था ना, मेरा उससे क्या था, मैं थोड़ी अगर बताऊँ कुछ करता था, मैं करवा देता हूँ दूसरा देगा, इतना मजारों के पास जाके सज्दे वगैरह करवा देता है शैतान, अमन अमरिया के नाम से जिन्नात के नाम से करवा देता है। रहमत अल्लाह से पूछा था एक मतलब मैंने भी कि भाई ऐसा होता है कि साहब फलां की दरगाह पे काम हो जा रहा, फलां की दरगाह पे काम हो जा रहा, शैतान लपट जाता है, वहां जाते हैं महीना महीना दो महीना ठहर जाती है खवातीन, और कभी किसी का शैतान उतर भी जाता है जिन, और कभी किसी का नहीं उतरता है। उसने फरमाया था कि ये सब जिन्नात का खेल है, वहां कोई बुजुर्ग बुजुर्ग का मामला नहीं, ये सब जिन्नात का खेल है। और ये फरमाया था कि मखसूस शैतान का, शैतान का जिन्नात है ना, जो शरीर जिन्नात होते हैं उन्हीं को शैतान कहते हैं, और जाहिर है कि वहां शरीर जिन्नात थोड़ी है, शरीर जिन्नात ये जो धंधा बनाए हुए हैं। तो उनका मकसद होता है आदमी को ईमान से हटाकर शिर्क में मुब्तला करना। जब वो शिर्क में मुब्तला हो गया, तो जब वो शिर्क में मुब्तला हो गया तो दुनिया का रहा आखिरत का रहा, बाद मरतबा उसका शैतान हार जाता है कि मकसद पूरा हो गया, बाद मरतबा उसको और पकड़ लेता है कि शिर्क के बाद में तो आदमी और कमजोर हो जाता है रूहानियत के एतबार से। और कभी ऐसा होता है कि लोगों को गुमराह करने के वास्ते, लोगों को लोगों ने पब्लिसिटी करने के वास्ते ऐसा भी होता है कि जब कोई जाता है वहां पर तो बड़े शयातीन छोटे शैतान को भगा देते हैं, जैसे बड़ा पहलवान छोटे पहलवान को भगा देता है, बड़ा टाइगर बड़ा रोड़ी छोटे रोड़ी को क्या करता है, जादू से मार के भगा देता है। मगर उसके बाद में बड़ा रोड़ी जो रहता है बड़ा पहलवान उसका असर हो जाता है, फिर तो मुझे सिलसिला चलता रहता है हर रोड़ी के बाद में। एक साहब किराए से थे, वो मकान खाली नहीं कर रहे, दूसरे साहब ने उनको बहुत जोर डाला कि भाई किराया मकान खाली कर दो, उन्होंने खाली नहीं किया, वो लड़ाई पे आ गए, पहलवानी पे आ गए। उसने सोचा कि नहीं ये पहलवान है, मैं तो सिलसिला नहीं सकता, उसने बात पैसे थे, उसने बड़े पहलवानों से बात की, बड़े पहलवानों से बात की, बड़े पहलवान आए जिनसे मार के उसके मकान खाली करा दिए, सामान वामान निकाल के बाहर भेज दिए, आईंदा खत्म करना तो फिर सामना पड़ो, चला जाओ भाग गया पड़ो, जो किराएदार था उन्हें खाली करके चले गए। 15 दिन के बाद बड़ा पहलवान आगे वाला मेरा मामूल जो मैं तो वही बुझ जाता हूँ, अब वो सिलसिला पड़ गया उसका, छोटे पहलवान से तो यकदम मजाक मिल गई, लेकिन बड़े पहलवान से जिंदगी भर की मुसीबत हो गई। तो ये फरमाया था हजरत रहमतुल्लाह अलैहि ने कि वहां बाल मरतबा ऐसा होता है कि अपना मकसद क्योंकि शैतानों का हासिल हो गया तो वो चले जाते हैं, और बाल मरतबा ऐसा होता है कि बड़े दादा छोटे दादा को भगा देते हैं, बड़े शरीर छोटे शरीर को भगा देते हैं, मगर बड़े शरीर का रंगा हो जाता है फिर कि फिर हर थोड़े दिन को हाजिरी देना पड़ता हो जाएगा, हर थोड़े दिन को यहाँ पे हाजिरी आ जाती नहीं, या तो वहां हाजिरी दो नहीं तो यहाँ हाजिरी, चक्कर चल पड़ता है शिल्पर किताब का और खुराफात का हुकूम का। इसलिए बहनों से भी दरखास्त है कि कभी दरगाहों के चक्कर में नहीं जाना, भाइयों से भी दरखास्त है कि कभी उस चक्कर में नहीं जाना, बुजुर्ग आए दिन किसी को सताते उताते नहीं, बुजुर्ग आए दिन की किसी पर हाजिरी नहीं होती, याद रखना। जिन होता है वो किसी बुजुर्ग का अपने को नाम लेता है, किसी बुजुर्ग का नाम लेके अपने को मुकद्दस बताता है ताकि लोग उसका एहतराम करें, होता वो जिन है, वरना अल्लाह वाले दुनिया में किसी को नहीं सताए तो दुनिया से जाने के बाद किसी को ऊपर आके उसको सताते हैं, किसी औरत के ऊपर आके उसका जीना मुश्किल कर देते हैं, उसकी शादी मुश्किल कर देते हैं, उसके उसके लिए मसला खड़ा कर देते हैं, उसमें इज्जत का दायरे के जिसमें जीना आ गया उसके लिए तो दुनिया में भी क्या हैसियत रह जाती है, शादी से पहले ऐसा हो गया तो रिश्ते में कितनी रुकावट हो जाती है उसके बाद, अरे भी चाहे भी जाने की चिंता होगी, पहले हुआ था कि फिर बाद में हुआ तो काफी होती है, 50 किस्म के झगड़े हैं, तो अल्लाह वाले ये काम करने पर बैठते हैं, कोई काम नहीं है वहाँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको जो मकाम अता फरमाया मुजाहिदे हक में मशगूल होते हैं, वो इस काम के अंदर नहीं होते, तो बस ये है कि शैतान भी अदब होता है, ऐसा नहीं कहेगा कि इतनी कमर से बीमार कर तुम नहीं मिल पा, अगर एक आदमी को विदायत अल्लाह हासिल नहीं होगी तो विदायत शैतान हासिल हो जाएगी, जो मैं कह रहा था, चाहे विदायत आम्मा हासिल हो कि चाहे विदायत खासा हासिल हो। और विदायत खासा पर इतने तय का जुमला मैं सुना रहा था कि बाद मरतबा ऐसा होता है कि जब इंसान शैतानत पर आते हैं तो शैतान को अल्लाह ने वो ताकतें नहीं दी हैं जो इंसान को अल्लाह ने दिए हैं। अगर से बात चीजों में शैतान को इम्तियाज हासिल है इंसानों के मुकाबले में कि इंसान वैसा काम नहीं कर सकता, लेकिन शैतान की खूबसूरत ये है कि वो जबरन किसी को गुमराह नहीं कर सकता, जबरन किसी को गुमराह नहीं कर सकता, मगर इंसानों में बदता और बात ऐसा होता है कि वो मजबूर करते हैं किसी को गुमराही दूर करें, बहुत होता है। कितने मुसलमानों को सताया गया पिछले जमाने में भी और हर जमाने में सताया जाता है। मुसलमान कभी तलवार से इस्लाम को नहीं फैलाया, हमेशा इस्लाम लाने से तलवार लोगों ने उठाई कि क्यों इस्लाम कबूल किया, प्रोपेगेंडा लेना गलत किया जाता है ताकि सच बात को छुपा दिया जाए, हक बात को छुपा दिया जाए, मैंने इस्लाम थोड़ी भी ताकत से फैलता है, इस्लाम का ताल्लुक दिल से और दिल पर कोई थोड़ी जबर किया जा सकता है, वो तो दिल के मानने की बात होती है, दिल पर कोई जबर नहीं किया जा सकता है। इस्लाम अखलाक से फैला है, इस्लाम तलवार से नहीं फैला, हाँ इस्लाम के खिलाफ हमेशा तलवार होती है, इस्लाम के खिलाफ हमेशा जबर जुल्म हुआ है, ताजी हुई है, ज्यादती हुई है, मुसलमानों को हमेशा से सताया गया है, चाहे वो मुसलमान दूसरे पास आदम के जमाने के हों या वो मुसलमान ईसा अलैहि सलाम के जमाने के हों, क्योंकि उनके जमाने में हर जमाने के सच्चे मजहब का नाम इस्लाम होता है, ये कायदा याद रखना, चाहे वो मुसलमान मूसा अलैहि सलाम के जमाने के हों, चाहे वो मुसलमान नूह अलैहि सलाम के जमाने के हों, चाहे वो मुसलमान मूसा अलैहि सलाम के जमाने के हों, फिरौन ने किसको सताया, मुसलमानों को सताता था और किसको सताता था। तो बस ये है कि मुसलमानों के साथ तो हमेशा ज्यादती होती रही है, लेकिन प्रोपेगेंडा किया जाता है कि मुसलमानों ने ऐसा किया, अपन पूछने से पहले बहन पूछ दे, मतलब उल्टा हो जा रहा काम, एक लतीफा है, लतीफे का लतीफा है, बाप की बात है, वो ये था कि एक साहब की बहन बीमार हो गई, हलवानों की दवा खाने को लगी गई, तो उसने देखा कि इसके पेट में गड़बड़ है, तो डॉक्टर साहब ने एक बड़ा गोला बना गोली दे नहीं सकते, बहन को गोला दी, उसने कहा इसको खिलाऊं कैसे, तो उसने कहा तू खिलाना है, तो फिर डॉक्टर साहब ने तस्वीर ये बताई कि फूकनी इसके मुंह में डालो और फिर वो फूकने में से गोली छोड़ो, जब वो गोली उसके हालत में गई तो जोर से इधर से फूक वो हालत में फंस जाती है, निकल जाते कैसा भी जाए, अब सुबह दवा खाने को आए तो ऐसा मोटा गंदा है, खुद ही आए ऐसा मोटा गंदा, अरे ये क्या हो गया, ऐसा फूक भी तो उसके मुंह में डाल दिया, गोली भी उसके मुंह में डाला, मगर मैं फूकना चाह रहा था उन्हें फूक दी, गोली उधर जाने की इधर आ गई, अब उधर गंदा इधर गंदा मोटा हो गया। मुसलमानों ने कभी किसी पर ज्यादती नहीं की है, हमेशा मुसलमानों पर ज्यादती की गई है, मगर प्रोपेगेंडा ऐसा है, प्रोपेगेंडा ऐसा किया जाता है, हाँ जिसको जवाबर्दी बहादुरी और शजावत और हिम्मत इन चीजों के मुजाहरे की जरूरत पेश आई, तो फिर इस्लाम ने ऐसे अवसाद पैदा किए, इस्लाम की खुदूसियत यह है कि उसमें आदमी में बेखौफी आती है, बेतबली आती है, बड़े बड़े बहादुरी के कारनों में इसके दाखिल होते हैं, तो लोगों ने बहादुरी का नाम दे दिया जुल्म ताजी का, हालांकि वो बात नहीं है। तो गर्ज यह है कि क्योंकि शैतान इंसान में ये बात है कि उसमें ज्यादा सिफात है, इसलिए जब वो इंसानियत पर आता है तो सिफात के अतबार से उसी तरह तरक्की करता है, और जब वो शैतानत पर आता है तो उसी अतबार से उसमें तरक्की होती है, तो फिर शैतान से भी आगे निकल जाता है। इसलिए मेरे दोस्तों औलिया अल्लाह की तालीमात अपनाना इसलिए जरूरी है, उनको सुनना, उनको याद रखना, उनके ऊपर अमल करना, उनके बताए हुए तरीके के मुताबिक एक्सरसाइज करना, एक होती है एक्सरसाइज मश्क बाहर की बॉडी बिल्डर बनने की, और एक होती है एक्सरसाइज रूहानियत की, जिक्र की मश्क, जिक्र की मश्क, मुरातबे की मश्क, मन के याददाश्त की मश्क, अमाल की मश्क, ये अमाल में मलका बन जाए, आदत बना देना, इस वास्ते कि दीन की आदत आदमी बना लेता है, तो अगर तबीयत का मूड है तो भी कर लेता है, तबीयत का मूड नहीं है तो भी कर लेता है, और अगर दीन के मुताबिक आदत अपनी नहीं ढाली गई है तो तबीयत का मूड है तब तो कर लेता है, मूड नहीं है तो नहीं कर पाता, इस्तेकामत नहीं हो पाता, तो मश्क करना और आदत होती है मश्क करने, किसी भी चीज की आदत कब होगी जब उस पर मश्क की जाएगी, सीने बुलाने की आदत कब होगी जब उस पर मश्क की जाएगी, लिखने की आदत कब होगी जब उस पर मश्क की जाएगी, हर चीज का ताल्लुक लिखने, अब डायरेक्ट एक आदमी शुरू में अच्छा लिखना चाहता हो तो होगा नहीं, लिखते 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 जब आदत हो जाएगी मश्क हो जाएगी तो फिर सही लिख पाएगा, उसके बाद बड़े सही लिख पाता है, ऐसी दीनी अमाल की आदत डालनी पड़ती है, ध्यान की आदत डालनी पड़ती है, अल्लाह की अजमत में और फिर अल्लाह की कुदरत में और फिक्र की आदत डालनी पड़ती है, आमाले मोहम्मदी की आदत डालनी पड़ती है, सुन्नतों की आदत डालनी पड़ती है, सुन्नत के मुताबिक खाना आदत पर है, सुन्नत के मुताबिक सोना आदत पर है, सुन्नत के मुताबिक एक एक काम अंजाम देना आदत पर है, बगैर आदत के नहीं हुआ करता कोई काम, और छोटे से छोटे अमल को भी आदत में डालना पड़ता है, पहले अमल पहले आदत में आता है फिर उसके बाद में वो इबादत में मुंतकिल होता है, और ہی اللہ والوں کے پاس مستقل طویل ٹائم کے لیے لمبے وقت کے لیے صحبت میں رہنا چاہیے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ والے کیونکہ خود عادت ڈالے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ رہ کے آدمی کو اپنے اعمال کی عادت ڈالنا آسان ہو جاتا ہے. علماء نے فرمایا کہ آدمی جب کہتا ہے دوسرے آدمی کی صفات اور عادات کو, آدمی دوسرے کی صفات اور عادات کو جذب کرتا ہے. اچھے کے پاس رہیں گے تو اچھے کی صفات اور عادات جذب کرے گا, برے کے پاس رہیں گے تو برے کی صفات اور عادات جذب کرے گا. اس لیے ہر زمانے میں اللہ والوں کی صحبت میں رہنے کا, ان کے پاس آنے جانے کا اہتمام کیا گیا ہے اور کرنے کی ترغیب دی گئی ہے کہ چونکہ ان کے اعمال ان کے اخلاق قرآن حدیث کے مطابق مشق کیے ہوئے ہوتے ہیں, اس لیے دوسرے آدمی کو اس کے رنگ پکڑنے میں اور دوسرے آدمی کو جذب کرنے میں سہولت ہوتی ہے. تو رنگ پکڑنا کہتے ہیں, رنگین ہونا کہتے ہیں, انضباط کہتے ہیں. قرآن کریم میں اس کی تعلیم دی گئی صفات اللہ ومن احسن من اللہ صفات. صفات اللہ پہلے فیض کا مفہوم ہے, یہ اس کا فیض محدود ہے. اس بہو صفات اللہ رنگ جاؤ تم اللہ کے رنگ میں. اب اللہ کا رنگ کا ہے رنگنے کے بعد ارے تخلقو بھی اخلاق اللہ, اخلاق اختیار کرو اللہ والے. اب اخلاق اور عادت اللہ والے کہاں اختیار کریں گے؟ تو اللہ والوں سے اختیار کریں گے. اس لیے انتباہ نہیں, آدمی رنگین ہونا, کسی سے تعصب لے کر اس کے مطابق عادت اپنی بنا لینا, کسی سے تعصب لے کر اس کے مطابق صفات اپنے اندر جذب کر لینا, کسی سے تعصب لے کر اس کے مظاہر واقعی کے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اتنے مرید ہیں, ان کی ٹوپی کا اسٹائل, ان کے کپڑوں کا اسٹائل, ان کی داڑھی کا اسٹائل, ان کے بہت کیا ہے, وہ انتباہ ہے, وہ دیکھ کے رنگ پکڑ کر. جیسے یہ ظاہر میں آدمی تعصب لے لیتا ہے, ایسے صفات میں لیتا ہے, ایسے عادات میں لیتا ہے, ایسے مزاج میں لیتا ہے, ایسے اعمال میں لیتا ہے. ان کے پسندیدہ اعمال اس کے پسندیدہ ہو جاتے ہیں, ان کے ناپسندیدہ اعمال اس کے ناپسندیدہ ہو جاتے ہیں, ان کے پسندیدہ صفات اس کے اندر منتقل ہو جاتے ہیں, ان کے ناپسندیدہ صفات اس کے اندر ان کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے, جس درجے میں مناسبت ہوتی ہے. اور اسی وجہ سے پیری مریدی کا تعلق مناسبت سے ہے. جتنی مناسبت پیدا ہوگی اپنے شہر سے اتنا آدمی جلدی ترقی کرے گا, اور جتنی مناسبت میں دیری ہوگی اتنا ترقی میں بھی دیری ہوگی. اور مناسبت کا مطلب ہے اپنے شہر کے قول و فعل پر اعتراض نہ ہونا, اور مناسبت کا مطلب ہے اس کی تعلیم کا آدمی پر اثر کرنا, اور مناسبت کا مطلب ہے اس کی تعلیمات پر عمل میں آدمی آسانی محسوس کرنا کہ طبیعت اس کی طرح خود لب کے, اس کا مطلب ہے مناسبت. اور اس سے محبت کرنا, قلب اس کی طرح کپکنا, اس کی ذات سے محبت ہو جانا, دماغ سے قطع نظر اس کی ذات سے جتنی کسی کو محبت ہوگی اتنا جلدی رنگ منتقل ہو جائے گا. یہ جتنا جلدی رنگ منتقل ہو جائے گا وہ ان رنگوں میں سے رنگ نسبت کا بھی ہوتا ہے, تو نسبت منتقل ہو جائے گی. اور نسبت کا نام ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولایت ہے. نسبت کا اردو اللہ کیا ہے؟ اللہ پاک کی ولایت ہے. تو ولایت حاصل ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی, اور ولایت میں ترقی ہو جائے, اور ولایت عامہ سے ولایت خاصہ حاصل ہو جائے. ولایت خاصہ بزرگان دین کو کہتے ہیں. بزرگی کسی نوعیت میں آدمی کو مل جائے, بزرگی مل جائے کا مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی بھی جنہیں وقت بن جائے گا, اتنے وقت بن جائے گا, شہر وقت, ایسا نہیں ہوتا. اپنی اپنی استعداد ہوتی ہے, اپنی اپنی قابلیت ہوتی ہے, اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بزرگی اس کو مل جاتی ہے. اور یہ بات ہے کہ نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے, بزرگی کا دروازہ بند ہوا ہے. نبوت کا دروازہ بند ہوا, خاتم النبیین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں, لیکن ولایت کا دروازہ بند ہوا ہے. آدمی ولی بن سکتا ہے, بڑے سے بڑا ولی بن سکتا ہے. اور جو بڑے بڑے ولی بن رہے ہیں وہ عام سمپل آدمی تھے, وہ معمولی آدمی تھے. ان کی ولایت سامنے آنے سے پہلے اس سے پتا چل گیا کہ انجام سے یہ معلوم نہیں ہے کہ کون کتنا بڑا بننے والا ہے, اس لیے مایوس کسی کو نہیں ہونا, اس کی حقیقت کسی کو نہیں سمجھنا ہے, نہیں معلوم کر کے دیں گے کیا بن جائے. بڑے بڑے بزرگ وقت کے بڑے بزرگ ہر سلسلے کے اکابرین میں جا کے شامل ہوتے ہیں. ولایت خاصہ کے بڑے مراتب میں جو ہوتے ہیں, پہلے ان کی جو حالت تھی وہ اتنی معمولی تھی کہ کوئی آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ آدمی اس مقام کا ہو. حضرت پچھلے حافظ رحمۃ اللہ علیہ بزرگوں میں سے گزرے ہیں. ایسے بزرگ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا اعزاز ان کو دیا, اتنا اکرام ان کا کیا کہ جس جگہ وہ چلتے تھے اس جگہ جانور اپنی پیٹ نہیں کرتے تھے, یعنی بھینس اپنا گوبر نہیں ڈالتے. جانوروں میں اتنا احترام گزرات کا اللہ پاک نے پیدا کر دیا. ان کا رندہ اکارت والا جو اللہ کا ہوتا ہے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کے دلوں میں ان کا احترام ڈال دیا تھا. جانور گوبر نہیں کرتے تھے اس راستے پر, جس راستے پر وہ کہ پچھلے آپ ہی چلتے تھے, لیکن شراب بولتے تھے, بہت بڑے شراب پیتے تھے, ہمیشہ نشے میں ڈوب رہے تھے. اب جو ان کے شراب پینے کے زمانے کو دیکھے گا تو وہ سمجھ سکتا تھا کہ یہ آدمی اتنا بڑا بنے بنے. ایک مرتبہ جا رہے تھے, دل کے اندر اللہ کے نام کی عظمت کا اثر دیکھ گیا. راستے میں ایک کاغذ کا ٹکڑا ملا, اس پر اللہ لکھا ہوا تھا. انہوں نے سوچا کہ اللہ لکھا ہوا اس کے اوپر ہے, और ये पैरों में आ रहा है, इसके ऊपर पैर पड़ रहे होंगे, उसको उन्होंने उठा लिया अलग से, उसको सुरमा हाथों से लगाया करके रखा, उसको बताया और उसको अलग की जगह पर रखी और फिर अपने चल पड़े जिधर जाना था जा रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला ने रात में काफिले गैबी से उनको बुलवा दिया कि ऐ बिशर तुमने हमारे नाम की इज्जत की है, हम तुम्हारी इज्जत पूरी दुनिया में करा दें, तुम्हारे नाम को हम चमका देंगे। अल्लाह तबारक की तौफीक दे दी, अपने वक्त के शहर के पास चले गए, फिर वहां पर गए हाजिर की और फिर ऐसे भी ऐसे बिशर बने कि वो आगे हो गए, पैदल चलते थे अल्लाह की मोहब्बत में कि अल्लाह ने पक्ष बनाया है तो मैं चप्पल क्यों पहनूं, खुदा के पास ऊपर थोड़ी चप्पल से पहना जाता है। ये बुजुर्गों के हालात है, उनकी अपनी कैफियत है, कोई मसला नहीं होता ये कि आप इसे पद उतार के चले उधर रास्ते में जाएंगे खाने पड़ जाएंगे और कीचड़ उतर का पैर पड़ जाएगा, नहीं इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे, बीवी पिता जाकर दवाखाने में शरीक करेंगे इसके बदल क्या हो गया इसको बोल के, तो ऐसा नहीं कर सकते। मगर उन पर यह हाल था कि वो पैदल चलते थे और कहते थे कि मेरे अल्लाह के फर्ज तो मैं जूते नहीं पहनता। जब उन्होंने अल्लाह के फर्ज का एहतराम किया तो अल्लाह ने उनके कदमों का एहतराम करवा दिया कि जानवर जो है ना उनके ऊपर गोबर नहीं करते थे। ये कैसे पता चला? एक चरवाहा अपने जानवरों को लेकर चला रहा था, उस रास्ते पर जानवर ने गोबर कर दिया जहां पर पिछले आदमी चलते थे, जंगल में रहते हुए उसने कहा कि लगता है कि पिछले आदमी का इंतजाम हो गाँव को वापिस आए तो पता चला कि पिछले आदमी दुनिया से रुखसत हो गए हैं। क्यों? इसलिए कि जब पिछले आदमी के चलने की जगह पर जानवर ने गोबर कर दिया तो मतलब अल्लाह की तरफ से उनके ऊपर जो पाबंदी थी जानवरों पर वो खत्म हो गई और वो उनकी वहां खत्म होगी। जब तक अल्लाह का बंदा दुनिया में था उनको वहां पर पाबंदी थी, तो नॉर्मल हालत से आदमी कहां तक पहुंच रहे थे। दीदी आजमी रहमतुल्लाह अलैह क्या थे, बड़े सूरतबाज थे। अब उनके सूट खाने के जमाने में कोई आदमी सोचे तो सोच भी सकता है कि इतना बड़ा अल्लाह का वली हो, बड़े आए के सिलसिले से किया सबके सिले में जाके मिलते हैं ऊपर ये लोग, ऐसे बड़े बुजुर्ग सूट खा थे। और दूध खाने के लिए हाल इनका लिखा है कि अगर कोई गरीब आदमी है और दूध नहीं दे सकता तो उनके पास से साधन दे दिया करते थे, उनके दूध में अपने घर में साधन नहीं पकाते थे। अब बताओ क्या हालत नहीं होगी, क्या दूध के पैसे नहीं देने को तो घर में से साधन ला लेते थे कि आजकल दूध साधन की शक्ल में देते, रोटी की शक्ल में देते मगर दे ज्ञान होगा थी। लेकिन अल्लाह ने तौफीक दे दी, अल्लाह जिसको चाहे नवाज दे, अल्लाह ने तौफीक दे दी क्योंकि अल्लाह वाले की नजर पड़ गई और आना के आखरा नजर कीमिया वो होते हैं कि रात को एक नजर में कीमिया कर देते हैं। वो अल्लाह पाक ने ऐसी ताकी रखी है बुजुर्गों की तवज्जो के चाहने में। तवज्जो का मतलब क्या होता है? तवज्जो का मतलब होता है दिल से किसी के बारे में कोई चीज चाहना। तवज्जो का मतलब होता है कि दिल से किसी के बारे में कोई चीज चाहिए, अल्लाह तला को देगा मार के आप तौफीक दीजिए, ये तवज्जो है। फलाम तौबा की तौफीक दीजिए, फलाम तौबा के इस्तेमाल कीजिए, फलाम एक राह पे चल पड़े, तवज्जो है। तो बुजुर्गों की तवज्जो में उनकी दुआ में अल्लाह से दरख्वास्त में वो शान होती है कि खाक को कीमिया बना देते हैं, तो किसी की नजर पड़ गई तौबा की तौफीक हो गई, फिर तौफीक दे दी उन्होंने, बड़े बुजुर्गों में से हो गए। अपने आयात जो है वो क्या थे, इतने बड़े आदिल हरामैन या आबिद हरामैन जो बताना अब्दुल्लाह इब्न मुबारक के शेर हैं। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक सूफी भी थे, मुहाज्जिद भी थे, अजनाल वाला मुफस्सिर भी थे, फकीह भी थे, मुज्तहिद थे, इमाम हनीफा के शागिर्दों में आते हैं, इतने बड़े इमाम थे सब लाइनों के और बहुत बड़े तालिब थे और पैसे वाले थे। लोगों ने कहा कि आप हदीस का भी दर्द देते हैं, आप फतवे लिखते हैं, आप फिर तिजारत करने से आपको क्या हासिल है, पैसे भी आपके पास बहुत है, फिर हमें पैसे नहीं होते थे। एक बार फरमाया कि मैं खुद इतने आयाल और उन जैसे लोगों के लिए तिजारत करता हूँ कि तिजारत से नफा आता है, उनको भेजता हूँ कि वो हरमान में बैठे हुए अल्लाह की इबादत में लगे हुए हैं, मैं उनको फारिग रखना चाहता हूँ। इस जमाने में ये सोचने का मिजाज ही निकल गया कि हमारा फला दोस्त दीन के काम में लगा हुआ है, उसको फारिग करो, अपनी आमदनी में उसको शरीक करो, अपने कारोबार में उसका हिस्सा डालो, हमारे को अल्लाह ने दे दिया है हम फला को पूछते हैं ताकि वो इस फरागत के साथ अपने दीन के काम में लगा रहे। पहले जमाने में दीन शूर था तो दूसरे के दीन में खुद इस तरह शरीक हो जाते थे और दूसरे के दीनी कोशिशों को अपने अकाउंट में यूं दाखिल कर दिया करते थे। की बात है, बसीरत की बात है, अरे क्या आप एक काम कर रहे हैं और आपको पैसों की जरूरत है, वो पैसे मैंने आपको दे दिए, आप फारिग होंगे वो नेक काम में आप लगे हुए हैं, तो जाहिर है कि आपके नेक काम आपकी काम की नेकियां आपको तो मिलेगी और साथ में मेरे अकाउंट में भी आ जाएंगे। मैं कोई किताब नहीं लिख सकता, आपने किताब लिखी मैंने उसको छपवा दिया, जाहिर है कि उस किताब से जितना खैर फैलेगा बोला मैंने भी वो किताब लिखी। अलीफ का नाम भाला नहीं आता मगर किताब की मुताबिक में आखिरत में शुमार है। बसीरत की बात होती है, सूझबूझ की बात होती है। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने ये बताया कि मैं कारोबार करता हूँ बुजुर्गों ने आयात और जैसों के वास्ते, जो कुछ उससे नफा होता है मेरे पास काफी है, मैं उनको दे देता हूँ ताकि वो फरागत से इबादत
مدد پہنچا گیا اور ان کو عبادت کے لیے فارغ کر کے میں بھی حرمین میں ہوں. آپ سمجھ آ رہے ہیں, عبداللہ ابن مبارک حرمین میں نہیں ہے, مکے مدینے میں نہیں ہے, ایک نماز ایک لاکھ نمازوں کے برابر نہیں کما رہے ہو, لیکن کما رہے تھے کیونکہ جو آدمی وہاں کما رہا تھا اس کو کمانے دے رہے تھے تو اس کو ادھر آنا پڑتا تھا. ایسے بڑے عبداللہ ابن مبارک ایسی بڑی بدعت ابن عیاض کی خدمت کے لیے کاروبار کرتے تھے, لیکن خود بدعت ابن عیاض رات کو دیکھ کمانے میں ڈاکہ ڈالتے تھے, کوئی شرابی ہے اور جنہیں کوئی دودھ پا رہے ہیں, کوئی ڈاکہ ڈال رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. نارمل حالت میں میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ولایت کا دروازہ بند نہیں ہوتا اور فادی حالت کے اندر قوم کس جگہ پر کس مرتبے کو پہنچنے والا ہے کچھ معلوم نہیں ہوتا. اللہ پاک نے اپنی ولایت اور اپنا تعلق پیدا کرنے کے لیے رابطہ کھلا رکھا ہے اور پچھلے واقعات چیز کی جائز ہے, اب ایسا پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے. یہ میں بتا اس سے بڑی بزرگی کو آج بھی نہیں پہنچے پہنچے گا الگ بات ہے, مگر بین اپنی ولایت میں کوئی لمٹ نہیں ہے, کوئی حد بندی نہیں ہے. ہر آدمی اللہ کا قریب سے قریب تعلق حاصل کر سکتا ہے, اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور اس کے لیے دنیا میں ہمیں چھوڑا گیا ہے. علماء نے کیا فرمایا ہے, علماء نے یہ فرمایا ہے کہ روح اللہ تبارک و تعالیٰ کے مشاہدے میں تھی اس دنیا میں آنے سے پہلے, لیکن روح کو ترقی نہیں تھی. ارواح جو ہے مشاہدے حق میں تھی لیکن ان کو ترقی نہیں تھی, کیونکہ روح کے پاس آتا اور جوارے نیچے کے جس سے وہ ترقی والا کام کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم کی سواری اس کے برآمد فرمائی اور ترقی کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے, تو بھیجا اس لیے گیا ہے کہ تم آگے بڑھو. اب اگر یہ آدمی آگے نہیں بڑھ رہا ہے تو آٹومیٹکلی پیچھے ہٹ جاتا ہے. ادھر نہیں جاتے تو ادھر ایک نظام ہے انسان کے ساتھ میں, اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع فراہم کیا ہے کہ اگر تم بھی ذکر فکر میں لگ جاؤ گے, تم بھی مجاہدات میں رکھو گے, تم بھی مراقبوں میں رکھو گے, اور تم بھی سنتوں کے اہتمام میں لگ جاؤ گے, اور تم بھی مشق کرو گے, اور تم بھی اپنے نفس کی مخالفت سیکھو گے, اور تم بھی اپنے نفس کو گزرو گے, اور تم بھی کسی کی غلامی کرو گے, اور تم بھی کسی کو اپنا کر اپنا بڑا بنا کر اس کے بجلوں پر چلو گے, اور اس کو علی طرح کے سلام تک اپنا بڑا اور مبتلا مان کر آنکھ بند کر کے اس کی پیروی کر لو گے, تو اللہ پاک تم کو بھی سرفراز کر دے. کب کرے گا, کتنے دنوں کے بعد کرے گا, یہ نہیں کہا جا سکتا. ہر آدمی کے ساتھ اللہ کی عادت ہے, لیکن کرے گا. پچھلی کتابوں میں یہ بات کہی ہے قرب ابراہیم نے, وفادار ابراہیم کے صحیحوں میں, ابراہیم الذی وفا, ہم نے پچھلی کتابوں میں یہ بات کہی ہے موسیٰ کے صحیحوں میں, اور اب قرآن پاک میں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ون نسائی اللہ کا انسان اتنا ماتا انسان کو وہی ملے گا جو وہ کوشش کرے گا, اور یہ کہ اس کی کوشش کا لحاظ کیا جائے گا, اس کی کوشش کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا. کوشش کرے آدمی یقیناً نوازا جائے گا, سوال ہی نہیں پیدا ہو تو رائے کیے جائیں گے. ہاں اخلاق کے ساتھ ہو اور کوشش میں لگا ہوا, یہ نہیں کہ تھوڑے دن کوشش کر کے خاموش ہو جائے. 60 کھڑکیوں پر 100 کھڑکیوں پر پانی آتا ہے بور ویل سے, آپ کو پانی سے پانی نکال, پانی کے لیے کسی کو بور ویل کی ضرورت پڑ گئی. اب آپ کو پتا ہے کہ ایریے میں 100 کھڑکیوں پر 75 کھڑکیوں پر پانی آتا ہے. اب اگر کوئی آدمی 30 فٹ کھول کے خاموش ہو گیا, بغل میں اتنے پیسے لگا دیا اور اتنے پمپ ڈال دیا اور جناب اتنے پیسے میرے لگ گئے, اتنا بڑا گڑا کر دیا, پھر بھی پانی نہیں لگا, تھوڑے دن کے بعد میں آپ کو پھر دینا والا ہے سیکورٹی, آپ نے دوسری جگہ پھر 30 فٹ کرا دیا, پھر تھوڑے دن کے بعد میں اور ایک مرتبہ آپ کو دیا گا تیسری جگہ اور آپ نے پھر 30 فٹ کرا دیا. اب پانی ہے 85 فٹ پہ اور آپ کھولتے جا رہے ہیں 30 فٹ. اگر ایک آدمی کنٹینیو ایک ہی جگہ کھولتا اور 30 فٹ پہلے کھول کے تو خاموش ہو گیا تھا, پھر 30 کے بعد وہیں کھولنا شروع کرا, 60 پہ جا کے رک گیا, پھر 30 کے بعد 60 کے بعد وہیں کھولنا شروع کرا اور 85 تک پہنچ گیا, تو کیا ہوگا؟ ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ الگ الگ معاملہ کرتے ہیں کہ اپنی ولایت دیں گے ضرور, اپنی معرفت دیں گے ضرور, اپنی محبت دیں گے ضرور, اپنا بنائیں گے ضرور, مگر یہ ہے کہ اب کے آباد اپنا بنانے کی کچھ ذات ہے. آج ایک تجارت رب الخلود کو, آج ایک تجارت رب الخلود کو اپنا بنائیں گے نہ کبھی دل لیے بغیر, دل دینا پڑے گا. دل دینے کا مطلب کیا ہے کہ دنیا و مافیا سے دل کو فارغ کر لینا. راجی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک آدمی دنیا اور آخرت دونوں سے اپنے دل کو فارغ نہ کر لے, اللہ کے بارے میں بتایا کہ معرفت اس کو نہیں, مطلب دل کے مقصود کے اعتبار سے, دل کی چاہت کے اعتبار سے اللہ پاک ہی مقصود نظر ہو جائے, مطمئن نظر ہو جائے. لا مطلوب الا اللہ, لا محبوب الا اللہ, لا مقصود الا اللہ, حتیٰ کہ لا موجود الا اللہ, تو پھر لا معبود الا اللہ, تو پھر لا الہ الا اللہ. इंतजार को अपना बनाएंगे न कभी दिल दिए कभी एक लिमिट होती है उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं। एक बुजुर्ग जो है एक मुरीद एक बुजुर्ग के पास गए बाहर रहे एक हफ्ते तक उनके पास रहे देखा कि कोई खास तब्दीली नहीं आ रही कोई खास फायदा नहीं हो रहा। उन्होंने ये समझा कि हमारे शहर के पास कोई कमाल नहीं है बुजुर्ग जो है ना इन्हें खुद ही पहुंचा हुआ नहीं है तो मेरे को क्या पहुंचाएगा इसको खुद कुछ नहीं आता तो मेरे को क्या सिखाएगा ये ख्याल आना शुरू हो गया। और ऐसा होता है आमतौर पर पुराने मरीजों को थोड़े दिन पुराने हो जाते हैं तो कहते हैं उसी में बाद मरतबा शहर की तरफ से भी बातें सामने आ जाती है शहर के आमान बाद से सामने आ जाते हैं कि सामने वाले क्योंकि खुद उसको नहीं मालूम की नस्बत क्या है उसमें क्या है इसलिए अपनी तरफ से हुक्म लगा देता है इसके बाद में कुछ नहीं। तो वो जो मरीज था उसको ये ख्याल हो गया कि मेरे शहर के पास कोई कमाल नहीं है इस वजह से मैं इतने दिन से खाली हूँ अगर इसके पास खुद कुछ होता तो मैं देता हूँ। वो बुजुर्ग को कष्ट हो गया उन्होंने कहा कि एक मरतबा बाल्टी में पानी मंगवाया कि बाल्टी में पानी लाओ तो बाल्टी में पानी मंगवाया दरवाजे में खड़े हो गए जो काफी सामने से जाता था एक जग पानी उसके मुंह में मारते थे और वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता एक जग पानी मुंह में मारते अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दूसरा जग दूसरे पे उन्हें मुसलमान बाल्टी पूरी खत्म कर दी बाल्टी में जितने जग पानी थे उतने मुसलमान बना दिए। फिर अपने मरीज की तरफ कहा कि देख कुछ भी नहीं है वरना अंदर इतना है मेरे इलाज दादिया के जगह पर तुम्हें मुसलमान हो जाता मगर तेरे को रखा पाऊंगा क्यों नहीं दूंगा ये ना समझ के तेरे को मैं वैसे दे दूंगा तरतीब है हिकमत होती है अल्लाह तबारक व तआला का इंतजाम होता है। तो हर यह है कि जब आदमी काम में लगा हुआ होता है तो अल्लाह तबारक व तआला जरूर नमाज से है कि अल्लाह तो आता है बात करता है तो भाई
मुखालिफत को लेकर हुकूम कैसे होगी
ये रास्ता है। वल्लभी ने आनंद अच्छे तो रोबर जिला मतलब ये कि सबसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत और अल्लाह के रसूल से अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह के खातिर से मोहब्बत है कि अल्लाह के रसूल है अल्लाह के हबीब है। احب الله تعالى لما انعمكم واحبني لحبه اياي علي شريف اور ماما علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی محبت کرو کہ وہ تو رزق دینے والا ہے جس کے سب کچھ ہے اپ نے تمہیں وہاں سے ملتا ہے جو ملتا ہے اور مجھ سے محبت کرو کہ وہ مجھ سے محبت کرنا پھر بات بات کا اعزاز فرمایا۔ اگر اللہ کے رسول کی شدید محبت آ گئی تو آدمی کیا ہوتا ہے سب فیصد غلامی میں آ جاتا ہے اور یہی بات کہی جاتی ہے اور یہ اللہ کیا کہتے ہیں کہ محبت جو ہے نا وہ ایسے نہ رکھو ایک اللہ کے رسول اللہ کے رسول سے اور جس سے بھی محبت کرو تو اللہ اللہ کے رسول کے واسطے سے کرو ڈائریکٹ کسی سے محبت نہ ہو رہے اللہ میں ان ڈائریکٹ اللہ کے تھرو محبت چاہے وہ کسی سے ہو یہ مطلوب ہے اور حضور نے یہی کیا یہی چاہا ہے پچھلے پیغمبروں نے یہی کیا اور یہی چاہا ہے جتنی مطلوب ہے بھائی ہم کو بیت اللہ سے محبت ہے کیوں اس کہ وہ اللہ کا بیت ہے ہم کو رسول اللہ سے محبت ہے کیوں اس بات کہ وہ اللہ کے رسول ہے ہم کو کلام اللہ سے محبت ہے کیوں اس واسطے کہ وہ اللہ کا کلام ہے ہم کو مسجد اللہ سے محبت ہے کیوں اس واسطے کہ وہ اللہ کی مسجد ہے ہم کو خلق اللہ سے محبت ہوگی کیوں اس واسطے کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے اور جس کسی سے محبت کرنا ہوگا وہ اللہ کے تھرو کرنا ہوگا اس کا ایک اثر ہوگا وہ یہ کہ جب اللہ کے راستے سے اللہ کے تھرو کرے گا آدمی محبت تو اللہ ملحوظ ہوں گے پہلے ان کی رضا پہلے ملحوظ ہوگی اگر وہ راضی ہیں تو چیز آگے بڑھے گی اور اگر وہ راضی نہیں ہے تو ان کے تھرو محبت کرنے کا تو کوئی سینس ہی نہیں بیٹھتا کوئی مان مانے ہی نہیں بیٹھتے پھر اس وجہ سے وہاں آ کے آگے رک جائے گا کہ اللہ کے خاطر سے نہیں لیے تو پھر بچوں کے ساتھ بھی معاملہ نہیں ہوگا بیوی کے ساتھ بھی معاملہ نہیں ہوگا ماں باپ کے ساتھ جس بات کا بہت نکل جائے گا اسی کا نام ملا ہے اس کرائے سے دی جاتی ہے اور یہ احترام کی تعلیمات اور اولیاء کہتے ہیں ان کو ان کو کرائے سے خاصہ حاصل ہوتی ہے اور اس کرایہ کا خاصہ کے رسول میں کیا بات ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہیں حکمت میں دوست جائے اور اللہ کی محبت میں دوست جائے اللہ کی رضا کی محبت سن جائے اور اللہ کے اللہ کا بار بار جو کا استعمال اور استعمال کا بڑا لازم ہو جائے ہماری رسول کی تعریف کا دیتی ہے اور آپ اس نام کا بھی آپ کا نام کا رسول اللہ کی محبت اللہ کا تعلق بڑا دے دیا ہو جائے گا کہ ہم سب اللہ سے بڑی دیں سب اللہ کے محتاج ہو سب اللہ کے فقیر ہو مرد ہو عورت ہو امیر ہو غریب ہو حاکم ہو مجذوب ہو تاجر ہو تاجر ہو بدخبر ہو اور عالم ہو جاہل ہو بڑے ہو کہ چھوٹے ہو کوئی ہو سب اللہ کے محتاج ہیں ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے محتاج ہیں اور ہم سب اللہ پاک کے محتاج ہیں محتاج رہیں گے ہمیشہ کبھی احتیاط ختم نہیں ہوں ہر چیز میں محتاج ہیں اللہ پاک کی طرف فخر آدمی کا مل جائے یہ جو فقیر اللہ امین اللہ ولی اللہ اور خلیفۃ اللہ کی بہن کتنے قادریوں میں آپ کے سامنے یا تو آگے ہوگی تو یا آئے گی ہر جگہ آپ کو سمجھائیں گے تفصیل دیں یہ ساری کہے کے لیے فخر اپنا مل جائے کیونکہ جب فخر اپنا مل جائے گا تو پتا چل جائے گا کہ ہماری ہم محتاج ہیں اللہ پاک کے ہر آن میں ہر وقت میں اور جس پر فخر کھل گیا میرے دوستوں اس پر کامیابی کا راستہ کھل گیا اس بات کو جو پتا چل گیا کہ غنا کا راستہ کیا کہاں سے میری کہاں سے میرا کام بنے گا ہم اپنے وجود میں اللہ کے محتاج ہیں کہ ہمارے وقت کا وجود نہیں تھا اللہ پاک نے وجود پر حامل کرنا ہے ان کے موجود کرنے سے موجود نظر آ رہے ہیں ان کی توجہ سے قائم ہیں اور ہم اپنی صفات میں اللہ کے محتاج ہیں ہماری اپنی جتنی صفات ہے اس میں ہم اللہ کے محتاج ہمارے جسم میں جتنے اعضاء ہیں ان سے جتنی صفات کا دور ہوا جتنے آواز ہو اس میں ہم اللہ کے محتاج ہیں آنکھ دیکھنے میں اللہ کے محتاج کان سننے میں اللہ کے محتاج زبان سننے میں اللہ کے محتاج دماغ اپنا سوچنے میں اللہ کے محتاج دل اپنا کام کرے اس میں اللہ کے محتاج جگر اپنا جگر اپنا کام کرے اس میں ہم اللہ کے محتاج دل اپنا کام کرے اس میں خود اپنا کام کرے اس میں حتیٰ کہ ہماری آنکھیں کام کرے اس میں حتیٰ کہ پیشاب پاخانہ کرنے میں بھی ہم اللہ کے محتاج ہیں اور کھانے میں بھی ہم اللہ کے محتاج ہر حالت میں محتاج ہر وقت محتاج ہمارا نام جو ہے نا محتاج محض ہے کیونکہ ہمارا کام جو ہے نا وہ محتاج محض ہے ہم سوالوں کا مجموعہ ہے ہم حاجتوں کا مجموعہ ہے ہم ضرورتوں کا مجموعہ ہے سوال محض کا نام عبد ہے اور جواب محض کا نام اللہ اللہ پاک جواب ہے اللہ ضرورت کو پوری کرنے والے بندہ تو محتاج ہے ہر چیز میں ہم یہ چاہیں کہ ہماری بیوی بچے محفوظ ہم اللہ کے محتاج ہیں ہم یہ چاہیں کہ ہمارے کاروبار उसमें तरक्की हो हम अल्लाह की मोहताज हैं, हमारे काम बने उसमें हम अल्लाह की मोहताज हैं, औलाद हमें हासिल हो उसमें हम अल्लाह की मोहताज हैं, शादियां हो हमारे बच्चों बच्चों की हम उसमें अल्लाह की मोहताज हैं, शादियां निभे उसमें हम अल्लाह की मोहताज हैं, सही उनके रुख रहे उसमें हम अल्लाह के मोहताज हैं, औलाद हो उसमें हम, कोई ऐसा मामला नहीं है कि जिसमें हम अल्लाह के मोहताज हैं, सब में हम अल्लाह पाक के मोहताज हैं कि अल्लाह ही सब कुछ करता है, अल्लाह बड़े हैं, अल्लाह ही खालिक हैं, अल्लाह ही मालिक हैं, अल्लाह ही रब हैं, अल्लाह ही हाकिम हैं, उनका हुक्म चलता है, जब वो बीमार करते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं, जब वो शिफा देते हैं तो हम शिफा पाते हैं, जब वो जिंदगी देते हैं तो हम लड़कों को जिंदगी देते हैं तो हम जिंदा हैं, और जब वो मार देंगे तो हम मर जाएंगे, जब वो फकीर करना चाहे तो फकीर कर देंगे, जब वो गनी बनाना चाहे तो गनी बना देंगे, हर आदमी अल्लाह तआला का मोहताज है, नबियों की तालीमात का खुलासा और आखिर में इमाम अलंबिया की तालीमात का खुलासा यही है कि इंसान पर उसका फकर हो जाए, वो समझ ले कि मैं फकीर हुआ हूँ, विलायत शुरू यही से होती है, विलायत की निहायत भी एक माना में यही है, इसी बात जितने कि आप मकतूबात को देखे उनकी किताबों को तो उनके आखिर में क्या लिखा हुआ होता है, अल फकीर अल अब्दुल हकीर अल फकीर, फकीर का यह ख्याल है, फकीर ये कहता है, फकीर लोग आपके उनके पास पैसे नहीं थे, वो खाते पीते नहीं थे, उसके बाद ऐसे भी थे जिनके पास पैसे नहीं होते थे, बाद ऐसे भी थे जो बहुत मालदार थे, लिखते फकीर ही थे अपने, क्यों इस बात कि दुनिया का सामान होना फकीरी के खिलाफ नहीं है, आके खोया गया उससे फकीरी करा, वरना है मालिक फकीर सल्तनत में रोमशाम, नाम अखबार कह रहे हैं, फकीर का माल क्या है, अमरीका और रूस की सल्तनत, ये फकीर का इलाका है, मेरे 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 झोपड़े मेरे जना गुजरी में क्या है, मेरे कमरे में क्या है, तो अल्लाह इकबाल कह रहे हैं कि मेरे कमरे में तो अमरीका की हुकूमत नहीं है, मेरे कमरे में जैसे रशिया की हुकूमत नहीं है, मतलब फकीर का फकीर आगे खोया गया उससे फकीरी का राज, वरना है माले फकीर सल्तनत रोमशाम, फकीरी ये नहीं है, फकीरी ये है कि आदमी पर फकर खुल जाए कि मैं मोहताज हूँ अल्लाह का हर आन में हर जान में, सब मनते हैं सब शिकारी मांगते हैं उससे वो सारी मखलूक जो आसमानों में और मांगती है उससे वो सारी मखलूक जो जमीन में है, कुरान का अल्लाह ने फरमा दिया रहमान में, ये अलहु मन फिस समावाति वल अर्ध उससे मांगते हैं वो सब जो आसमानों में और वो सब जो जमीन में है, सब मनते हैं सब शिकारी, सबको उन्हीं से मिला, सबको उन्हीं से मिल रहा है, सबको उन्हीं से मिलेगा, जो मिलता है जिसको मिलता है अल्लाह के मोहताज है, हमारा ईमान बचे अल्लाह के मोहताज है, अल्लाह पाक की मारिफत बढ़े उसमें हम अल्लाह के मोहताज है, अगर ये अल्लाह से महफूज रहे उसमें हम अल्लाह के मोहताज है, उनके वकील की शक्ति से महफूज रहे उसमें हम अल्लाह के मोहताज है, मैदान अहसर की जिले से महफूज रहे उसमें हम अल्लाह के मोहताज है, गुजरात से बिजली की तरफ मिले उसमें हम अल्लाह के मोहताज है, मैदान अहसर में सरकार की शफाफत मिले उसमें हम अल्लाह के मोहताज है, जन्नत में जाके भी अल्लाह की हालत खत्म नहीं होगी, आदमी अल्लाह का मोहताज नहीं रहता, वैसी बात नहीं, ये अलग बात है कि उन्हें सीधी चोरी खुद दे देंगे और खुदाई दे देंगे, की खुदाई की शान क्या है, जो चाहे वो हो जाता है, जन्नत में हम जो चाहेंगे क्या होगा खुदाई शान मिल जाएगी, लेकिन अल्लाह से फकत अल्लाह की एहतियात करेंगे, अल्लाह का मजमून इसलिए सुनाया जाता है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह का मजमून है, और ये औलिया अल्लाह की तालीमात खासतौर पर जिक्र आदिया की तालीमात में बुनियादी सबक है, फकर खुल जाना अपना, क्योंकि इसके खुलने के साथ साथ ला इलाहा इल्लल्लाह के मजमून की वजाहत है, असल में इसके खुलने के साथ साथ जितना ये खुलता चला जाएगा उतनी अल्लाह तबारक व तआला की अजमत और मारिफत और मोहब्बत खुलती चली जाएगी, किस किस चीज में हम मोहताज हैं और वो अपनी हमारी हाजत को और मखलूक की हाजत को दूर करने पर कैसे कादिर है, वो कादिर मुतलक है, वो पालने पर आए तो कैसे पाल सकते हैं, वो बचाने पर आए तो कैसे बचा सकते हैं, वो हिफाजत करने पर आए तो कैसे हिफाजत कर सकते हैं, वो पकड़ने पर आए तो कैसे पकड़ सकते हैं, वो दलील करने पर आए तो कैसे दलील कर सकते हैं, वो परेशान करने पर आए तो कैसे परेशान कर सकते हैं, ये सारा मजमून इसी से चलता है कि सारी मखलूक अल्लाह की मोहताज है और सबकी हाजत को अल्लाह पूरी करते हैं और हाजत अल्लाह पूरी करने में किसी शक्ल और सूरत के पाबंद नहीं है, वो जब चाहे जिसके साथ चाहे जो चाहे करें और जिस शक्ल से चाहे हाजत पूरी करें और जिस शक्ल से चाहे हाजत को बंद करें, किस शक्ल से चाहे पूरी करें, अल्लाह इसका नाम अल्लाह पाक की मारिफत में ये बात दाखिल है, इसको जितना आदमी गौर करेगा और इस पर अपना जितना ध्यान लगाएगा और इसको जितना जल्द करेगा अपने दिलो दिमाग के अंदर, उतना ज्यादा अल्लाह पाक के अंदर मोहब्बत का दरवाजा उसके दिलो दिमाग में बसेगा और जितनी ये बात हासिल होती चली जाएगी उतना ही कुछ मिलेगा, क्योंकि इसका प्रेशर इतना होता है कि फिर आदमी असलियत में आ जाता है, बंदगी में आ जाता है कि भाई फिर अल्लाह से मामला नहीं रखना चाहिए, اللہ کی بندگی کرنی چاہیے، اللہ کے حکم کو پورا کرنا چاہیے، اللہ کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے. لیکن اتنے پاورفل، اتنے پریشر کے بغیر نفس کی مخالفت آسان نہیں ہے. نفس کو کھیل تماشا نہیں ہے. بڑے مودی کو مارا، نفس ہمارا اور گھر مارا. فرشتہ بھی یہ ہو جائے تو اس سے اللہ پاک کی عظمت اور اللہ پاک کی بڑائی آدمی کے دل دماغ پر ایسی آ جائے کہ آدمی کا نفس جو ہے نا وہ اس کی ہمت جواب دے دے، اس کی مخالفت آدمی کو آسان ہو جائے، اس کی ہمت اس کا پیدا ہو جائے. معمولی چیز ہے، نفسانی قوت کوئی کھیل کروا جائے. نفس اللہ کی طرف سے امتحان میں رکھی ہوئی قوت کا نام ہے، اور اس قوت کا نام ہے جو شریعت پر چلنے لگے، اس قوت کا نام ہے جو نبی کی مخالفت پر چلایا آدمی، نفس اس قوت کا نام ہے جو اللہ کی بغاوت اور مخالفت پر چلایا آدمی، نفس اس قوت کا نام ہے جس نے شیطان کو شیطان بنا دیا. کوئی معمولی قوت نہیں ہوتی، اس کے واسطے اللہ کی عظمت و محبت انتہائی پریشر کے ساتھ ہونا پڑتا ہے. ریشن کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کا اتنا غلبہ ہو، اس کا اتنا استقدار ہو اور اللہ پاک کی عظمت ایسی کھل جائے کہ آدمی اپنے کو مجبور محسوس کرنے لگے کہ میں کسی وقت میں کسی آگ میں ان کی تفصیلت اور رنگے سے باہر دیں، کبھی بھی وہ مجھے پکڑ سکتے ہیں، کس طرح چاہے پکڑ سکتے ہیں، اور اگر کوئی مجھے پکڑ لے تو بچانا چاہے تو کبھی بھی وہ بچا سکتے ہیں، جس طرح چاہے بچا سکتے ہیں. ان کی شان بڑی عظیم ہے. جب وہ حفاظت کرنے پر آئے تو انبیاء کے ایمان کی انہوں نے حفاظت کی ہے مکڑی کے جالے سے. بتاؤ، قرآن پاک میں خود بیان کیا کہ اللہ عمر بیوت نبی الدان کپور، ان عمر بیوت نبی الدان کپور، کہ گھروں میں سب سے کمزور ترین گرد ہوتا ہے وہ عنکبوت کا، مکڑی کا گرد ہوتا ہے. اور حفاظت کی مخلوق کے سردار امام الانبیاء تاقی شاپ محشر کی، کس کے ذریعے سے؟ بیت عنکبوت کے ذریعے سے، مکڑی کے جالے سے. کہ غار طور میں جب آقا نام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکڑی کے ذریعے سے جالا کروا دیا غار کے اوپر، اور دشمن وہاں تک پہنچ گیا. دوسرے پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہتا ہے کہ دشمن نظر آ رہا ہے، دشمن تو پہنچ گیا، آپ رکھا کہ لاتا کری نوان پانا، آپ رنگ نہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، غم نہ کرو اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ نے جانا کر دیا. دشمن نے غار پر پہنچ کر یہ طے کیا، سوچا اگر اس غار میں کوئی انسان اترا ہے تو پھر مکڑی کا جالا محفوظ نہیں رہتا ہے. مکڑی کے جالے کے اس پر قائم رہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اندر کوئی نہیں اترا ہے، جالا واپس کرو، ڈاک کے بھوکے جا کے واپس کرو. عبادت کرنے کے واسطے کوئی طاقت پر چیز ہونا ضروری نہیں ہے. اللہ نے وہ دیکھنے کے اعتبار سے تو جالا تان دیا تھا باہر کے روپے، لیکن اثر تان دیا ان کے دماغوں پہ، پتہ کیوں؟ کیونکہ ان کے دماغ میں یہ بات آئی کہ بھائی یہ جالا اگر ہے تو انسان تو جالے کے بغیر، انسان جب جائے گا تو کہاں جالا محفوظ رہے گا؟ جب وہ عبادت کرنے پر آیا تو ان کو عبادت کرے. موسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی کیسے عبادت تھی؟ اللہ کے والے کا محبت کا مل نہیں، سارے پریشان. پکڑ لے گی تابوت میں رکھنا، ایک دم میں رکھ دینا اور پانی میں ڈال دینا. یہ دونوں کام ایسے ہیں میرے دوستو، انتہائی حیرت ناک اور موت کے منہ میں ڈالنے کے برابر. چھوٹے بچے کو بغیر دودھ پانی کی اگر آپ لوگ مدد کر دیں گے تو زندہ رہے گا، مر جائے گا؟ پانی میں ڈال دیں گے تو زندہ رہے گا یا مر جائے گا؟ مر جائے گا. اب تعالیٰ شانو حفاظت کا راستہ بتا دیں گے، بندے کو مدد کرو اور پانی میں ڈالو. ایسے موقع پر ایسے احکام میں ایمان کی بات، ایمان اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ اللہ کا بھروسہ کس کو ہے. خدا علیہ السلام کی ماں کے ایمان کی بات ہے، ان کی ماں کا ایمان ایسا تھا کہ اللہ کے وعدے پر قابل یقین تھا کہ اللہ ہمارے وہ حفاظت کریں گے اور جیسے چاہے کریں گے. اللہ نے بند کیا اور ڈال دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمایا کہ میں موسیٰ کی عبادت کروں گا ایک عجیب راستے سے کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ جیسے ہی موسیٰ کو فرعون دیکھے گا تو اس دیکھنے میں اس کے دل میں محبت جھوٹا جھوٹا ہوتا ہے. اللہ اور فرمائیے کہ کس چیز کو ذریعہ بنایا عبادت کا؟ دشمن کی نگاہ کو. دشمن کی نگاہ کو، یہ نگاہ کے فرشتے اٹھا لے جائیں گے، یہ نگاہ کی وجہ سے عبادت کی جائے گی. یہ کہا کہ دشمن کی نگاہ کو ذریعہ بنا دوں گا تو اس کے دل میں موسیٰ کی محبت جھوٹا دوں گا، اور حکم میں شہید ہوگی ہوگی. باقی میں سنا چکا ہوں، جیسے موسیٰ کی محبت دل میں آئی تو فرعون بدل ہو گیا اور حضرت موسیٰ کے خلاف کوئی اپنی پلان پوری نہیں کرتی. اللہ نے دشمن کی نظر کھایا کہ دشمن کی نظر ہی سب سے زیادہ حملہ ہوتی ہے آدمی کے، اس کو اللہ نے ذریعہ بنا دیا اس کا دشمن کی عبادت کا. اور پالا تو کیا پالا؟ دشمن کے گھر میں پالا، اور شاہی انداز میں پالا، और ऐसे पाला कि उनकी माँ के पास भी पहुंचा दिया और विवाह का खर्चा उठवा दिया, ऐसे उसके उठवा दिए, ये उसका ढीला करवा दिया और माँ के पास लड़के करवा दिए। ये शायद अल्लाह ने माँ अगर पास दी तो पता नहीं कितने पापड़ दे दिए गरीब, और पता नहीं उसके बाद क्या बनवाया होता। ये बुरा निकलवा दिया, ये बनवा दिया किसका, फिरौन का, और बनवा दिया उसका इस तरह की माँ के पास। आप देखिए रहना, हम वापिस करेंगे मुसा को तुम्हारे पास, फरमा और इसको हम पैगंबर बनाने वाले हैं, अल्लाह ने फरमा दिया। ऐसा वापिस किया, ऐसा वापिस किया कि वहां सब दूध पिलाने वाले को हमने हराम कर दिया था। मुसा को कह दिया था कि खबरदार किसी का दूध न पीना। ये हराम और हलाल होना देना ये अजीब किस्म का होता है। छोटे बच्चों का जानवर पर कुछ हल्ला हराम है, पकड़ी के ऊपर कोई हराम है, कोई शादी हमने दूध पीने वाले को हराम कर दिया था मुसा पर, किसी का दूध मुंह में नहीं लेना। और मुसा की बहन पीछे पीछे आ रही थी, और मुसा अल्लाह को खुदा ने कि बहन ने बता दिया कि घर वाले हैं, अगर आप कहें तो शायद की मदद करेंगे। और मुसा अल्लाह की मां बुलाया गया, मुसा अल्लाह के इंतजार में थे, यदि अल्लाह की आवाज में आए तो दूध मुंह में लिया और बस फैला होकर पिए और सो गए। अब किसी का दूध नहीं पीने वाला आदमी, एक बच्चा एक माँ का दूध पी रहा है, तो फिरौन देना नजायज मिन्नत हिमाचत पर आ गया, बावजूद फिरौन होने की फिरौन अपनी फिरौनियत तो भूल गया। और इतने मुसा इस्लाम की माँ से मिन्नत हिमाचत की कि इस बच्चे को पालना है और ये तुम्हारे अलावा किसी का दूध नहीं पी रहा, लिहाजा तुमको पिलाना पड़ेगा। और मुसा इस्लाम की माँ नखड़ा कर रही थी, मेरे पास फैन ये मेरे हमारे यहाँ का काम है, मैं सब ये करूँ, ये भी करूँगा, ये भी दूंगा, तनख्वाह मुकर्र कर दी, निकाय किताबों के अंदर की तनखा भी मुकर करवा दी। और ये कहा कि मैं तुम्हारे घर में नहीं पा सकती, इनको अपने घर लेके जाऊंगी, हफ्ते में एक आध मतलब तुम्हारे को सूरत दिखाने ला देती हूँ बंदे को, तुमने बहुत अच्छा है, अपने घर को ले जाओ। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह निकाय के लोग दीन का काम करते हैं और तनख्वाह लेते हैं, उनकी किताब मुसा अलैहि सलाम की माँ कैसी है कि अपने बच्चे को दूध पिला रही थी और फिर उन्हें तनख्वाह ले रही थी। उनकी मिसाल मुसा अलैहिस्सलाम की माँ की तरह थी। बात ये हुई कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसी इबादत करते हैं, अल्लाह ऐसे पालने वाले, अल्लाह ऐसी इबादत करने वाले, अल्लाह ऐसे रब हैं, ऐसे पालनहार हैं, ऐसी ऐसी जगह से रोटी देते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की नजाफियत ऐसी है, उनकी मोहिमियत ऐसी है, उनकी इबादत ऐसी है, उनका इल्म ऐसा है, उनकी कुदरत ऐसी है, उनकी समाहत ऐसी है, उनकी वसारत ऐसी है, उनकी कुदरत ऐसी है। फिर जब ये आदमी को खुल जाता है कि मैं रात में दिन में अंधेरे में उजाले में माल में जान में आंखों में कानों में हाथों में पैरों में खून में रग में दिल में सब में अल्लाह का मोहताज हूँ, एक एक चीज में अल्लाह का मोहताज हूँ, रहूंगा मरने तक रहूंगा, अवध में रहूंगा, उसके बाद में रहूंगा। अल्लाह बताइए उसकी बात नहीं कि आदमी का दहन किस बात का फैसला करेगा। अगर ये मजदूर किसी बहन भाई पर मुनकशिफ हो गया, इसका नूर उसको उसके दिल ने ले लिया, इस मजदूर के नूर को जो कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मजदूर है, अगर इसके नूर को किसी के दिल ने ले लिया, उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा होगा कि अल्लाह पाक की बंदगी और अल्लाह को राजी करने का जज्बा उसमें आएगा। इसीलिए फरमाया इबादत के लिए पैदा किया, तर्जुमा है उसका मारिफत के लिए पैदा किया, मतलब ये कि वो मारिफत मोतबर है जो इबादत पर आए, वो मारिफत मोतबर है बंदगी पर और इबादत पर ले आए। अल्लाह पाक की आत्मा इतनी खुल जाना इतनी खा जाना कि बंदा ये फैसला कर रहे कि भाई उनकी इबादत करनी है, उनकी मुखालफत नहीं करनी है, जो हुक्म उन्होंने दे दिया जैसा दिया, चाहे जान के नुकसान होता हो, जान का नुकसान, माल का नुकसान, इज्जत का नुकसान, लोगों के दरमियान मलामत होती हो, लोग पूछेंगे नहीं पूछेंगे, इन सब चीजों से कोई फायदा नहीं। अल्लाह का हुक्म है और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाकीज़ा तरीका है, बस उसके मुताबिक चलना। और नफा नुकसान अल्लाह के हाथ में, नफा नुकसान अल्लाह ने किसी चीज से नहीं जोड़ा। अब ये सफर का महीना है, लोगों ने इसके साथ आदत और मोहब्बत की लड़ाई कर रखे हैं, दूसरे बात बताते ने इनकार फरमा दिया कि नहीं इसकी कोई असर नहीं। सफर में बेशुमार कामयाबियां हैं, सफर को उन्होंने मुजफ्फर बनाया, सफर मुजफ्फर कामयाबियों का महीना है। कभी सफर में भी अल्लाह पाक की नेमतें मिलती हैं, सफर में भी मिलती हैं, और जनाब में भी मिलती हैं, मजबूत और मजबूत की तकसीम नहीं है। हाँ, ज्यादा फजीलत कम फजीलत तो है, लेकिन यह कि खराब है या अच्छा है जाने, सफर देना मजबूत महीना नहीं होता। उल्लू का उड़ना कोई नौजन की बात नहीं है, परिंदे का उड़ना कोई नौजन की बात नहीं है, सामने से बिल्ली का गुजर जाना कोई नौजन की बात नहीं है, बीमारियों को मुकाबले होना इसकी कोई असर नहीं है। बस शिकुनी मत दिया करो, बस बर्फबारी मत दिया करो, आप नफा और नुकसान को अल्लाह से जोड़ो। तौहीद यह है, हम इसके मोहताज हैं, अल्लाह के मोहताज, कहाँ से दर्दें पूरी होगी, अल्लाह से पूरी होगी, सारी चीजों के खजाने किसके पास है, अल्लाह के पास है, और कहाँ से मिलती है, अल्लाह के पास से मिलती है, नौकरियाँ कहाँ से मिलती है, अल्लाह के पास से मिलती है, اور اتنا یقین اللہ تبارک و تعالیٰ کے لازم دماغ میں آ جائے کہ دنیا کے حالات ہم پر آسان ہو جائے, کتنے بھی کیسے حال آ جائے, چاہے دیر میں آدمی کو بھونا جانے والا ہو, اس کے سر پر آرا رکھ کے چیز دیا جا رہا ہو, وہ بھی اس پر آسان ہو جاتا ہے اگر نافا کے ساتھ جانے کا یقین حاصل ہو جائے, پھر بھی وہ قوم نہیں کرتا, جن بھی حال میں وہ پریشانی ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر ہے, بندہ بندے کو وہ حال میں رکھے ان کا حق ہے, وہ تقدیر دینا بدلہ کے حکم میں سے اللہ کا حق ہے کہ بندہ اللہ کی تقدیر سے راضی ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حالات کو چھوڑ دے, کیوں جانتے کو دنوں کی آزمائش من اليقين ما قبل لي علينا مصائب الدنيا ونجينا من الفتنة وأصابنا وعقوباتنا ما أعيتنا واجعل الوالد منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية قربتنا ولا تفرج عنا من لا يرحمنا, اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تفرج علينا واغفر لنا وارحمنا وصل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. Thank you.